قوالی کے شائقین حضرات کی خدمت میں سپر کیسٹ انڈسٹریز ٹی سیریز پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات کی خواہشوں کا احترام کرتے ہوئے اور بے حد فرمائش پر غوث پاک کا بچپن اس کیسٹ کے بعد یہ تازہ ترین کیسٹ جو تسلیم عارف سید پور بدایونی پیش کر رہے ہیں، حضور غوث العظم دستگیر کے والد ماجد حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، جس کو سیب کا واقعہ بھی کہتے ہیں۔ ایک سیب دریا میں بہتا ہوا آ رہا تھا، آپ کئی دن ہو گئے تھے بھوکے پیاسے آپ کو، اس لیے وہ سیب جب نزدیک آیا تو آپ نے دریا سے اٹھا کر آدھا کھا لیا۔ اس کے بعد یہ خیال آتا ہے کہ یہ سیب پتہ نہیں کس کا ہوگا، میں نے اس کے مالک سے اجازت تو لی نہیں، بغیر پوچھے ہوئے کھا لیا بھوک میں۔ اب اس سیب کی معافی کے لیے آپ چل دیتے ہیں دریا کے کنارے کنارے، پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ حضور غوث العظم کی پیدائش کس مہینے میں ہوتی ہے؟ سامعین سماعت کیجئے گا یہ واقعہ، جس کے مصنف ہیں خالق کانپوری، فنکار تسلیم عارف سید پور بدایونی، میوزک عمر خان۔
کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم،
جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم،
تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم، لیکن قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا، قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا، تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم۔ لیجئے ان کے والد کا واقعہ سماعت کیجئے گا۔
ایک نوجوان کا حال، ایک نوجوان کا حال سنو غور سے پیارے،
رہتے ہیں دور بستی سے دریا کے کنارے، رہتے ہیں دور بستی سے دریا کے کنارے، رہتے ہیں دور بستی سے دریا کے کنارے۔
ایک نوجوان کا حال سنو غور سے پیارے،
ایک نوجوان کا حال سنو غور سے پیارے،
ایک نوجوان کا حال سنو غور سے پیارے،
رہتے ہیں دور بستی سے دریا کے کنارے، رہتے ہیں دور بستی سے دریا کے کنارے، رہتے ہیں دور بستی سے دریا کے کنارے۔
سماعت کیجئے گا حضرات، یہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ واقعہ کیسے۔
ایک نوجوان کا حال سنو غور سے پیارے، رہتے ہیں دور بستی سے دریا کے کنارے، ہے نام ابو صالح یہ ہیں عرش کے تارے، ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں قرآن کے پارے، سمجھے اسے غلط تو یہ خود اس کی بھول ہے، یہ نوجوان کون ہے آل رسول ہے، مزدوری کرنے جاتے تھے بستی کبھی کبھی، محنت کے بعد جتنی بھی اجرت انہیں ملتی، ان پیسوں سے بازار سے لاتے تھے وہ روٹی، اس طرح ابو صالح کی کٹتی تھی زندگی، ہر دم خدا کا ذکر ہی بس ان کا کام تھا، پادے نماز لب پہ درود و سلام تھا،
कुदरत खुदा की देखिए बीमार पड़ गए, मजदूरी करने फिर ये दोबारा न जा सके, मजदूरी
करने फिर ये दोबारा न जा सके, मजदूरी करने फिर ये दोबारा न जा सके।
रोटी जो खत्म हो गई तो रोजे रख लिए,
रोटी जो खत्म हो गई तो रोजे रख लिए, रोटी जो खत्म हो गई तो रोजे रख लिए,
रोटी जो खत्म हो गई तो रोजे रख लिए।
लेकिन खुदा की याद से गाफिल नहीं हुए, लेकिन खुदा की याद से गाफिल नहीं हुए, लेकिन खुदा की याद से गाफिल नहीं हुए।
मेहनत मजदूरी करना ये गौसुल आजम के वालिद माजिद का काम है। आप मेहनत मजदूरी करके ही अपना गुजारा करते हैं, लेकिन एक रोज ऐसा भी आया कि आप बीमार पड़ गए और मेहनत मजदूरी के लिए ना जा सके। जब आप मजदूरी के लिए नहीं गए तो घर में खाने की परेशानी हो गई, इसलिए आपने किसी से मांगा नहीं बल्कि क्या करना शुरू कर दिया, समाज फरमा दिया।
पानी से की इफ्तार तबीयत बहल गई, इस वास्ते अल्लाह की रहमत मचल गई, दो चार दिन का जिक्र क्या हफ्ते गुजर गए, कमजोरी बढ़ी भूख से चकरा के गिर पड़े, आया जो होश शुक्र के सजदे अदा किए, भेजा खुदा ने सेब फिर खाने के वास्ते, पानी में बहता बस वहीं एक सेब आ गया, बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने वो सेब खा लिया, पहुंची गिजा जो पेट में दिल को हुआ सुरूर, ताजा हुआ दिमाग तो चेहरे पे आया नूर, रह रहे के दिल दिमाग से कहता था ये जरूर, क्या माल खाया मुफ्त का जायज भी है हुजूर, क्या माल खाया मुफ्त का जायज भी है हुजूर, क्या माल खाया मुफ्त का जायज भी है हुजूर।
वो चीज खूब खाओ
में अल्लाह का बस ये सवाल है, कुरान में अल्लाह का बस ये सवाल है, कुरान में अल्लाह का बस ये सवाल है।
ऐ मोमिनो वो चीज खूब खाओ जो तुम पर हलाल है, कुरान में अल्लाह का बस ये सवाल है। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर के वालिद माजिद कई दिन जब रोजा रखते रखते हो गए, एक दिन आप चकरा के गिर पड़े और जब होश आया तो उस मालिक का शुक्र अदा किया। फिर आप दरिया के किनार पर बैठकर एक दिन अपना रोजा पानी से इफ्तार रहे थे, इतने में आप क्या देखते हैं कि एक सेब आ रहा है दरिया में बहता हुआ दूर से। जब वो सेब आपके नजदीक आया तो आपने हाथ बढ़ाकर उठाकर उसको आधा खा लिया, लेकिन ख्याल ये आया कि ये तो मुझ पर हराम हो गया, मैंने इसके मालिक से पूछा नहीं है। उसके बाद जब ये दिल में ख्याल आया आपके, तो आप क्या करते हैं समाप्त कीजिएगा।
वो सोचते थे ये गुना मुझसे हुआ अजीम, इतनी खता तो माफ मेरी कर दे ए करीम, क्योंकि तू बादशाहों का है बादशाह रहीम। फिर ये ख्याल आया कि चल खुद ही ए नदीम, मरना है तो चल कर मैं उसी राह में मरूं, जिसका है सेब उससे मैं माफी तलब करूं। वो सेब बहता पानी में आया था जिधर से, लेकर खुदा का नाम उसी सिमत चल दिए। हालत बिगड़ के रह गई मंजिल पे जो पहुंचे, देखा के लबे दरिया है कुछ बाग से बुके,
देखा के लबे दरिया है कुछ बाग से बुके, देखा के लबे दरिया है कुछ बाग से बुके,
देखा के एक
जुबां पे मेरे मोहम्मद का नाम है, उसकी जुबां पे मेरे मोहम्मद का नाम है, उसकी जुबां पे मेरे मोहम्मद का नाम है,
देखा के
उसकी जुबां पे मेरे मोहम्मद का नाम है, उसकी जुबां पे मेरे मोहम्मद का नाम है, उसकी जुबां पे मेरे मोहम्मद का नाम है।
देखा के एक बुजुर्ग जो आली मकाम है, उसकी जुबां पे मेरे मोहम्मद का नाम है। गौसुल आजम के वालिद उस दरिया के किनार किनार बहुत दूर आगे निकल जाते हैं, इस ख्याल से कि पता नहीं ये किस बाग से सेब टूट कर आया है। बहुत दूर जाने के बाद आपको सेब का एक बाग नजर आता है। आप जब उस बाग के अंदर जाते हैं तो वहां एक बुजुर्ग बैठे अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, खुदावंद कुद्दूस की इबादत कर रहे थे। आपने जब उन बुजुर्ग पर नजर डाली तो उनसे क्या कहा, उनको देखकर आपके दिल में क्या ख्याल आया, आगे समाप्त फरमाइए।
कहती थी आंख देख ये रोशन चराग है, मालूम तू कर इनसे के ये किसके बाग है, भूल जाएगा जमीर पे जो तेरे दाग है, कि अर्जी बुजुर्ग से ये किसका बाग है। वो बोले क्यों क्या बात है, ये बाग है मेरा, फिर आपने उस सेब का कह डाला माजरा। बोले जनाब हो गई है मुझसे ये खता, बेइज्न मैंने आपका एक सेब खा लिया, हसनैन के तुफैल में दिल साफ कीजिए, सदके में पंजतन के खता माफ कीजिए, दिल में कहा बुजुर्ग ने ये हीरा है हीरा, फिर बोले आप शर्त है सुन गौर से जरा, है शर्त मेरी बेटी से भी ब्याह तुम करो, फिर उसके बाद चाहे मदीने में जा रहो।
वो बुजुर्ग कहते हैं कि जनाब अगर आपने मेरे बाग का एक सेब मुझसे बगैर पूछे हुए खाया है तो आपकी गलती माफ तो हो जाएगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। पहले तो आप एक महीने तक मेरा ये बाग रखाइए। हुजूर गौसुल आजम के वालिद माजिद कहते हैं कि ठीक है, एक महीने आप वो बाग रखाते हैं। कहते हैं हुजूर अब इजाजत दीजिए, तो कहा अभी नहीं, एक महीने और रखाइए। दो महीने रखाते हैं आप वो बाग, फिर कहा हुजूर अब, कहा अभी नहीं, ये सेब जो तुमने खाया था ये 3 महीने में तैयार होता है पककर, इसलिए अभी आपको 1 महीने और रखाना है ये बाग। आप 3 महीने तक वो बाग रखाते हैं, फिर कहते हैं हुजूर अब, कहा कि अभी नहीं, एक खास बात रह गई है, अगर तुमने उसको पूरा किया, अगर मेरी वो शर्त तुमने मंजूर कर ली तो समझो माफी है, वरना नहीं। वो शर्त कौन सी है समाप्त कीजिएगा।
ऐ शर्त मेरी बेटी से भी ब्याह तुम करो, फिर उसके बाद चाहे मदीने में जा रहो, ये भी सुनो बेटी है मेरी पांव से लंगड़ी, कुछ बोलती नहीं है के है मुंह से वो गूंगी, ये भी सुनो बेटी है मेरी पांव से लंगड़ी, कुछ बोलती नहीं है कि है मुंह से वो गूंगी, आंखों से है अंधी तो है कानों से वो बहरी, तुम खूब दिल में सोच लो ये बात है गहरी, अलमुख्तसर जब अक्द उस लड़की से हो गया, कमरे में देखा रात को एक चांद का टुकड़ा, अंधी कहाँ गई मेरी दिल सोचने लगा, शायद ये कोई दूसरी है दिल ने ये कहा, शायद ये कोई दूसरी है दिल ने ये कहा, शायद ये कोई दूसरी है दिल ने ये कहा।
खामोश इधर लड़की थी अपना झुकाए सर,
खामोश इधर लड़की थी अपना झुकाए सर, खामोश इधर लड़की थी अपना झुकाए सर,
खामोश इधर लड़की थी अपना झुकाए सर,
और वो रहे नमाज में मशगूल रात भर, और वो रहे नमाज में मशगूल रात भर, और वो रहे नमाज में मशगूल रात भर,
हर लड़की थी अपना झुकाए सर, और वो रहे नमाज में मशगूल रात भर। आप वो शर्त मान जाते हैं उन बुजुर्ग की, और उन बुजुर्ग की लड़की बेटी के साथ आपका निकाह होता है, लेकिन जब आप अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर आए और रात को जब चेहरा देखा तो एक चांद सा चेहरा है, न अंधी है न लंगड़ी है, आप हैरत में पड़ जाते हैं कि मुझे तो अंधी बताया गया था लेकिन ये तो अंधी नहीं है। इसलिए आप इस ख्याल से रात भर इबादत करते रहे, और वो रात भर अपना सर झुकाए बैठी रही कि पता नहीं ये कोई दूसरी लड़की आ गई है, क्या चक्कर है। जब सुबह होता है इसी तरह से, तो आप जाते हैं उन बुजुर्ग के पास और क्या कहते हैं जाकर, आप लोग भी सुनिएगा।
जाकर सुबह बुजुर्ग को पहले किया सलाम, देकर दुआ बुजुर्ग हुए उनसे हम कलाम, चेहरा तुम्हारा कहता है ये रात का प्याम, मैं झूठ तुमसे बोला नहीं, सुन लो नेक नाम। मोमिन के लिए झूठ गुनाह है, अजीम है, इस बात का गवाह मेरा रब्बे करीम है। वो बुजुर्ग कहते हैं कि तुम ये समझकर मेरे पास आए हो इतने सुबह कि मैंने कल जो तुमसे कहा था अपनी लड़की के बारे में चार बातें जो बताई थी वो झूठ कही थी। ऐसी बात नहीं है, मोमिन के लिए झूठ बोलना सबसे बड़ा गुनाह है। मैंने जो तुमसे कहा है अपनी बेटी के बारे में वो सब सही है, लेकिन किस तरह सही है समझने का फिर है। देखिए मैंने क्या कहा है तुमसे, मैं उसको खुलासा कर रहा हूं। वो बुजुर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं सुने।
मोमिन के लिए झूठ गुनाह है, अजीम है, इस बात का गवाह मेरा रब्बे करीम है। देखा न किसी गैर को अंधी है इसलिए, बाहर न निकली घर से वो लंगड़ी है इसलिए, गीबत नहीं सुनती है वो बहरी है इसलिए, वो झूठ नहीं बोलती गूंगी है इसलिए, वो झूठ नहीं बोलती गूंगी है इसलिए, वो झूठ नहीं बोलती गूंगी है इसलिए।
अल्लाह के करम से ये मासूम कली है,
अल्लाह के करम से ये मासूम कली है, अल्लाह के करम से ये मासूम कली है,
अल्लाह के करम से ये मासूम कली है।
बेटी मेरी कुरान के साए में पली है, बेटी मेरी कुरान के साए में पली है, बेटी मेरी कुरान के साए में पली है,
अल्लाह के करम से ये मासूम कली है,
अल्लाह के करम से ये मासूम कली है,
अल्लाह के करम से ये मासूम कली है।
बेटी मेरी कुरान के साए में पली है, बेटी मेरी कुरान के साए में पली है, बेटी मेरी कुरान के साए में पली है।
अल्लाह के करम से ये मासूम कली है, बेटी मेरी कुरान के साए में पली है। जब ये बात साफ हो जाती है तो फिर आप चैन से रहने लगते हैं। अब गौसुल आजम दस्तगीर की पैदाइश का वक्त आता है। आप कौन से महीने में पैदा होते हैं समाप्त कीजिएगा।
अल मुख्तसर वो रहने लगे फिर हंसी खुशी, यादे खुदा में कटने लगी उनकी जिंदगी, वलियों के ताजदार के आने की है घड़ी, एक दिन नमाज पढ़ने में बीवी ने की जल्दी, आहिस्ता पढ़िए अम्मी एक आवाज सी आई, चारों तरफ को देखने को आंख उठाई, बोली खुदाया कौन है आवाज किसने दी, फिर कुछ ख्याल आया तो शर्मा के रह गई, रहमत से हक की नूरी सफीने में गौसे पाक, पैदा हुए रमजा के महीने में गौसे पाक।
देखिए हजरत, जब हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर अपनी वालिदा के शिकम में थे तो एक दिन आपकी वालदा जरा जल्दी जल्दी में नमाज अदा कर रही थी, एक आवाज आती है कि अम्मी नमाज आहिस्ता पढ़िएगा। आप ये आवाज सुनकर चौंक जाती हैं कि ये खुदाया ये आवाज किसकी है, लेकिन दूसरे ही पल जब ख्याल आया तो आप शर्मा के रह जाती हैं। क्यों? कि हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर अपनी माँ के शिकम में जलवा फरोज हो चुके थे, और फिर रमजान की चांद रात को, दूसरे दिन को रोजा था, यानी चांद रात वाले दिन गौसुल आजम दस्तगीर पैदा होते हैं। जब आप पैदा होते हैं तो पैदा होते ही कौन सी करामत दिखाते हैं आप, समाज कीजिएगा।
रहमत से हक की नूरी सफीने में गौसे पाक, पैदा हुए रमजा के महीने में गौसे पाक, दुनिया में आए जिस घड़ी ने लाया धुलाया, माँ ने दिया जब दूध तो मुंह से न लगाया, आवाज दी शौहर को इसे देखो क्या हुआ, पीता नहीं है दूध के ये माजरा है क्या,
पीता नहीं है दूध के ये माजरा है क्या, पीता नहीं है दूध के ये माजरा है क्या।
वो बोले ये भी आशिक परवरदिगार है,
वो बोले ये भी आशिक परवरदिगार है, वो बोले ये भी आशिक परवरदिगार है,
वो बोले ये भी आशिक परवरदिगार है,
शायद हमारा बच्चा भी ये रोजगार है, शायद हमारा बच्चा भी ये रोजगार है, शायद हमारा बच्चा भी ये रोजगार है।
वो बोले ये भी आशिक परवरदिगार है,
वो बोले ये भी आशिक परवरदिगार है,
वो बोले ये भी आशिक परवरदिगार है,
शायद हमारा बच्चा भी ये रोजगार है, शायद हमारा बच्चा भी ये रोजगार है, शायद हमारा बच्चा भी ये रोजगार है,
शायद हमारा बच्चा भी ये रोजगार है। जब गौसुल आजम दूसरे दिन को अपनी माँ का दूध नहीं पीते हैं तो आपकी माँ अपने शौहर को बुलाकर कहती हैं कि ये बच्चा दूध नहीं पी रहा है। हजरत अबू सवाले रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर के वालिद माजिद, कहते हैं कि आज पहला रोजा है, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा ये बच्चा भी रोजदार है, रोजेदार पैदा हुआ है ये। तो आखिरी बंद समाप्त कीजिएगा सामईन ये सेब के वाकये का, और इंशाल्लाह कैसेट के बी साइड में हम गौस पाक की ये करामत जिसको बसरे की बारात कहते हैं पेश करेंगे, आप लोग वो भी तवज्जो से सुनिए। ये आखिरी बंद मुलाजा फरमाए,
वो बोले ये भी आशिक परवरदिगार है, शायद हमारा बच्चा भी ये रोजदार है,
जब मस्जिदों में शाम को होने लगी अजान,
तो पीने लगे वो दूध बहुत हो के शाद माँ, पीने लगे वो दूध बहुत हो के शाद माँ, पीने लगे वो दूध बहुत हो के शाद माँ, पीने लगे वो दूध बहुत हो के शाद माँ, पीने लगे वो दूध बहुत हो के शाद माँ, पीने लगे वो दूध बहुत हो शादुमा, पीने लगे वो दूध बहुत हो के शादुमा।